पद्य पाठ योजना, विद्यालय का नाम, दिनांक, अध्यापक का नाम, कक्षा 7, वर्ग ग, कालांश द्वितीय, अवधि 40 मिनट, विषय संस्कृत काव्य, उपविषय गीतामृतम, सामान्य उद्देश्य प्रथम, संस्कृत कविता के प्रति छात्रों का सामान्य अनुराग उत्पन्न करना, द्वितीय, गति लय यति एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की योग्यता उत्पन्न करना, तृतीय, कविता के मुख्य भावों को ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना, चतुर्थ, छात्रों के भावों का परिष्कार करते हुए उनमें उदात्त भावों का विकास करना, पंचम, कविता के अंतर्गत शब्द योजना के आधार पर दृश्य चित्रों की उद्भावना करना, षष्ठ, काव्यगत सौंदर्य की अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करना, सप्तम, संस्कृत कविता का रसास्वादन करके अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करना, अष्टम, छात्रों को कविता के विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों को इस तथ्य से परिचित कराना कि धर्म के ह्रास के सम सज्जनों के परित्राण के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, इसी बहाने छात्रों के समक्ष गीता के अमर संदेश की झांकी प्रस्तुत करना और छात्रों के मन में उदात्त एवं पुण्य विचारों को सुदृढ़ बनाना। सहायक सामग्री, लपेट श्यामपट पर तुलसीकृत 2 चौपाइयां तथा कांत कवि की कुछ पंक्तियां। पूर्व ज्ञान, छात्र यह जानते हैं कि राम और कृष्ण अधिकांश भारतीयों द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वे रामनवमी एवं जन्माष्टमी का महत्व जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों तथा पांडवों में हुआ एवं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। प्रस्तावना, अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करेगा। प्रथम, हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? द्वितीय, जन्माष्टमी मनाने का क्या कारण है? तृतीय, राम और कृष्ण के समय की सर्वप्रमुख घटनाएं कौन सी थीं? चतुर्थ, महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? पंचम, अर्जुन कौन था? षष्ठ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? सप्तम, यह उपदेश कब दिया गया? उद्देश्य कथन, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। उस समय अर्जुन के रथ के सारथी एवं कुशल राजनीतिज्ञ एवं धर्मनायक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य परायणता का उपदेश दिया। ये उपदेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता के में वेदों एवं उपनिषदों का संपूर्ण सार आ गया है। आज हम इसी गीता के 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस बात पर बल दिया है कि संतों की रक्षा वे स्वयं करते हैं। विषयोपस्थापन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। गीता 417:8। संपूर्ण पाठ अर्थात दोनों श्लोकों को एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। आदर्श वाचन, अध्यापक दोनों श्लोकों का उचित लय एवं भावपूर्ण मुद्रा में आदर्श वाचन करेगा। अनुवाचन, अध्यापक एक पंक्ति अथवा पंक्ति के अंश का पहले वाचन करेगा, तत्पश्चात छात्रों द्वारा उतने का ही स्वर वाचन होगा। वाचन की सुविधा के लिए नीचे संकेत दिया जा रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्टकृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अनुकरण वाचन, कतिपय छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक एक करके श्लोकों का सस्वर वाचन किया जाएगा। बोध परीक्षा, प्रथम, इन श्लोकों में वक्ता कौन है? द्वितीय, भगवान श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं? तृतीय, भगवान अवतार कब लेते हैं? स्पष्टीकरण, अन्वय, सर्वप्रथम श्लोकों का खंडान्वय प्रणाली से अन्वय किया जाएगा। प्रश्न, एतयोः श्लोकयोः का कथयति? उत्तर, भगवान श्री कृष्णः कथयति। प्रश्न, सः कं कथयति? उत्तर, अर्जुनम्। प्रश्न, भगवान श्री कृष्णः अर्जुनम् केन नामना संबोधयति? उत्तर, भारत नामना। प्रश्न, भगवानं कं सृजति? उत्तर, आत्मानं। प्रश्न, कस्य ग्लानियः भवति? उत्तर, धर्मस्य। प्रश्न, अधर्मस्य किं भवति? अभ्युत्थानम्। प्रश्न, भगवान आत्मानं कदा सृजति? उत्तर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य च अभ्युत्थानं भवति। प्रश्न, केषां परित्राणाय भगवान संभवति? उत्तर, साधुनां परित्राणाय। प्रश्न, कस्य संस्थापनार्थाय सः अवतरति? उत्तर, धर्म संस्थापनार्थाय। प्रश्न, अवतारस्य अन्यतम की प्रयोजनम्? उत्तर, दुष्टकृतां विनाशः। पदच्छेद तथा पदार्थ कथन। कविता शिक्षण में पदार्थ के लिए सामान्य पदच्छेद ठीक हैं, किंतु अनेकानेक युक्तियों का प्रयोग सौंदर्यानुभूति में बाधक है, अतः पदार्थ का कथन करके आगे बढ़ा जाएगा। पदच्छेद, ग्लानिर्भवति भारत बराबर ग्लानियः धन भवति, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम प्लस अधर्मस्य, तदात्मानम बराबर तदा धन आत्मानम, सृजाम्यहम बराबर सृजामि धन अहम्, धर्म संस्थापनार्थाय बराबर धर्म संस्थापन धन अर्थाय, पदार्थ पद, ग्लानि अर्थ ह्रास अवनति, पद भारत अर्थ अर्जुन, अभ्युत्थानम उन्नति, आत्मानम स्वयं को, परित्राणाय रक्षा के लिए, साधुनाम सज्जनों को, दुष्टकृतान पापियों की, विनाशाय नाश के लिए, संस्थापनार्थाय संस्थापना के लिए, अध्यापक कथन। इन श्लोकों में सृजामि तथा संभवामि दोनों क्रियाएं ध्यान देने योग्य हैं। एक का अर्थ है रचना, दूसरे का अर्थ है उत्पन्न होना। भगवान स्वयं की रचना भी करते हैं। रचना और रचयिता दोनों ही वह स्वयं हैं। जब वे इस धरा पर उत्पन्न होते हैं और मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो इसे अवतार कहा जाता है। जब जब धर्म की अवनति और अधर्म की उन्नति होती है तो पापों के नाश, सज्जनों की रक्षा एवं धर्म की संस्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रथम, भगवान अवतार कब धारण करते हैं? द्वितीय, वे अवतार क्यों धारण करते हैं? तृतीय, अवतार में कौन किसकी रचना करता है? चतुर्थ, कुछ प्रमुख अवतारों के नाम बताओ। उत्तर, राम, कृष्ण, परशुराम, मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वराह, वामन आदि। पंचम, इन श्लोकों के से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? आदर्श वाचन, अध्यापक श्लोकों का पुनः आदर्श वाचन करेगा। तुलना, छात्रों, जिस भाव को गीता के इन दो श्लोकों में व्यक्त किया गया है उसी भाव को हिंदी के संत कवि भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना श्री रामचरित मानस में निम्नलिखित ढंग से प्रकट किया है। जब जब होई धर्म के हानि, बाणई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म की हानि एवं असुरों की वृद्धि होने पर सज्जनों की पीड़ा के निवारणार्थ भगवान मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। उड़िया के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने भी युगावतार शीर्षक के अंतर्गत इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। कांत कवि लिखते हैं, दुष्टकृति विनाश संत जन परित्राण, कारण धरारे अवतरी महाप्राण, स्वर्गर वार्ता धेन अहे देवदूत, पुण्य भूमि भारत को करी अक्षापूत, धर्म संस्थापन हेतु युगे युगे जही अवतरी ऐसी शक्ति उत्सवाई मही। यहाँ पर धैन का अर्थ लाना, वार्ता का अर्थ वार्ता, ऐसी का अर्थ ईश्वरीय तथा उस वासई का अर्थ भार हल्का करने से है। उड़ीसा का यह प्रसिद्ध कवि कहता है कि दुष्कृति के विनाश एवं संतों के परित्राण के कारण जो देवदूत तुम स्वर्ग के समाचार लाए हो, जिसने पुण्य भूमि भारत को पवित्र किया है, युग युग में पृथ्वी के भार को कम करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए तेश्वरी शक्ति का अवतार होता है। सस्वर वाचन, कतिपय छात्रों द्वारा श्लोकों का पाठन किया जाएगा। प्रयोग, दोनों श्लोकों तुलसी की चौपाई एवं कांत कवि की पंक्तियों को घर से कंठस्थ करके लाओगे। पद्य पाठ योजना द्वितीय, विद्यालय का नाम, दिनांक, अध्यापक का नाम, कक्षा 11, वर्ग ब, विषय संस्कृत पद्य, अवधि 40 मिनट, शीर्षक हिमालय, वर्णनम कालांश सप्तम, सामान्य उद्देश्य प्रथम, गति यति लय एवं भाव के अनुसार छंद पाठ करने की योग्यता प्रदान करना। द्वितीय, कविता के मुख्य भावों को ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना। तृतीय, छात्रों के भावों का परिष्कार करते हुए उनमें उदात्त भावों का विकास करना। चतुर्थ, कविता के अंतर्गत शब्द योजना के आधार पर दृश्य चित्रों की उद्भावना करना। पंचम, काव्यगत सौंदर्य की अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करना। षष्ठ, कविता का रसास्वादन करके अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकना। सप्तम, छात्रों को कविता के विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। अष्टम, छात्रों को वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, प्रसंगोद्भावनाएँ, अंतःकथाएँ एवं समान भाव की कविताओं से परिचित कराना। नवम, कवि के जीवन दर्शन से छात्रों को परिचित कराना। दसम, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करते हुए उन्हें काव्यगत रस एवं भाव का आनंद लेने की योग्यता प्रदान करना। 11, एकादश, स्वयं काव्य रचना करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। विशिष्ट उद्देश्य, प्रथम, छात्रों को हिमालय पर्वत की प्राचीनता और श्रेष्ठता से अवगत कराना। द्वितीय, छात्रों में हिमालय के प्रति रागात्मक संबंध उत्पन्न कर भारत के साथ उसकी अभिन्नता का ज्ञान देना। सहायक सामग्री, लपेट श्यामपट पर लिखित कतिपय समानांतर कविताएं तथा कक्षोपयोगी एवं अन्य उपकरण। पूर्व ज्ञान, प्रथम, छात्र भारत की उत्तरी सीमा के दृढ़ प्रहरी हिमालय पर्वत के नाम से पूर्णतया परिचित हैं। द्वितीय, वे इस पर्वत की सर्वोच्चता, महत्ता तथा उपयोगिता का ज्ञान भी रखते हैं। तृतीय, हिंदी भाषा में इसके प्रति लिखी गई कविताओं का अध्ययन भी वे कर चुके हैं। प्रस्तावना, अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित कविता सुनाकर प्रश्न करेगा। वाल्मीकि मुख्यः कवयो यदीयां सर्वे प्रभूतां प्रथयन्ति कीर्तिं वेद प्रभादीपित भूसुराणां देश चिरं भानु च भारताख्यः सुधोपमय दिव्य जलः सदैव गंधाद्यो यम सततम चुनन्ति श्री सरदा शारदा गीत यशः प्रशस्तिः देशः चिरं भानु स भारताख्यः। प्रथम, इस कविता में किस देश का वर्णन किया गया है? द्वितीय, यहाँ की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तृतीय, गंगा नदी किस पर्वत से निकलती है? चतुर्थ, इस पर्वत का नाम हिमालय क्यों है? पंचम, इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर किस नाम से विख्यात है? उद्देश्य कथन, विश्व के समस्त पर्वतों में अपनी उन्नत शिखरों के लिए प्रसिद्ध सदैव हिम से आच्छादित हिमालय भारत के गौरव का प्रतीक है। यह प्रकृति प्रेमियों की रमण स्थली है तो कवियों की कल्पना का उज्ज्वल विषय। प्राचीन समय से आज तक अनेक कवियों ने अनेक भाषाओं में सुंदर भावों और मंजुल कल्पनाओं से इसके रूप का वर्णन किया है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने भी अपने महाकाव्य कुमार संभव के प्रारंभ में इस पर्वत श्रेष्ठ की मनोरमता का अनुपम वर्णन किया है। आज हम हिमालय के उसी विशद वर्णन के लिए कुछ श्लोकों का रसास्वादन करेंगे। यम सर्वशैलः परिकल्प्य वत्सम मेरो स्थिते दोग्धरी दो दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोस दिश्च प्रथुपदिष्टाम दुदुहु चरित्रीम अनंतरत्न प्रभस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एक ही 200 गुण सन्निपाते निमज्ज तीन्दो किरणेवदि वाकम विषयोपस्थान। पाठ को अनवंतियों में विभक्त करके पढ़ाया जाएगा। प्रथम यम सर्वशैलः धरित्रीम, द्वितीय अनंत अंक आदर्श पाठ। अध्यापक प्रथम अन्विति का उचित स्वारोह अवरोह के साथ एवं समुचित भाव भंगिमा सहित सस्वर पाठ करेगा। उच्चारणाभ्यास, अध्यापक निम्नलिखित पदों का उच्चारण छात्रों से पूछेगा तथा यथावश्यक अभ्यास कराएगा। प्रथम परिकल्प्य, द्वितीय मैरो, तृतीय महोस्धीष्ट, चतुर्थ प्रथुपदिष्टाम, पंचम दुदुहूर्थ धीर्त्रीम। अनुकरण पाठ कतिपय छात्रों द्वारा। बोध प्रश्न, प्रथम समस्त पर्वतों ने किसका दोहन किया, द्वितीय दोहन करके पृथ्वी से उन्होंने क्या प्राप्त किया, स्पष्टीकरण। अध्यापक छात्रों के लिए निम्न पदों का अर्थ स्पष्ट करेगा। पद परिकल्प्य, अर्थ बनाकर या मानकर, प्रणाली व्युत्पत्ति द्वारा, परि धन कल्प धन ल्यप। द्वितीय दोग्धरी, दोहन करने वाला, अर्थ कथन द्वारा। तृतीय दो दक्षे, दोहन क्रिया में कुशल, समास विग्रह द्वारा, प्रणाली। चतुर्थ भास्वंती, प्रभा में, पर्याय कथन द्वारा। पंचम महोषधीय, दिव्य औषधियों को, संधि विच्छेद द्वारा महाधन औषधीय। षष्ठ प्रथुपदिष्टाम, राजा पृथु द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा पृथु प्लस उपदिष्टाम। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, प्रथम पृथ्वी को हम भारतीय किस प्राणी के रूप में मानते हैं। अध्यापक कथन, श्रीमद् भगवत पुराण में उल्लेख है कि एक बार राजा पृथु के राज्य में अन्न की भारी कमी हो गई, अन्न उत्पादन भी नहीं हुआ, प्रजा भूख से मरने लगी। महाराज पृथु ने अपने ज्ञान द्वारा यह ज्ञात कर लिया कि पृथ्वी का यह दोष है और उसने अपने में अन्नादिक को छिपा लिया है। यह कुपित हुआ और धनुष बाण लेकर पृथ्वी को नष्ट कर डालने के लिए उद्यत हुआ। पृथ्वी उसके भय से गौ का रूप धारण कर भागी, किंतु वह तब तक उसका पीछा करता रहा जब तक वह गौ उसी की शरण में ना आई। तभी से वह गौ के रूप में पृथ्वी को मानते हैं। द्वितीय गाय से दूध दुहने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तृतीय गाय किसके प्रति स्नेह होने के कारण दूध प्रदान करती है। चतुर्थ गौ रूपी पृथ्वी का किसके आदेश से दोहन किया गया। पंचम गौ रूपी पृथ्वी का किसने दोहन किया। षष्ठ समस्त पर्वतों ने किसको बछड़ा बनाया। सप्तम अतः हिमालय किसका पुत्र हुआ। अष्टम दोहन के समय दोहनकर्ता कौन उपस्थित था। नवम मेरु पर्वत किस क्रिया में चतुर था। दसम हिमालय को बछड़ा बनाकर पर्वतों ने गौ रूपे पृथ्वी से क्या निकाला। एकादश वे रत्न कैसे थे। द्वादश वे औषधियां कैसी थीं। त्रयोदश पृथ्वी का दोहन क्यों किया गया। अध्यापक कथन, जब राजा पृथु पृथ्वी से कुपित थे। शरणागत पृथ्वी ने उनके समक्ष अपने अपराध को स्वीकार किया एवं अन्न रत्न आदि सभी वस्तुएं पुनः पूर्व की भांति देने के लिए कहा। तब राजा पृथ्वी ने सभी वर्गों के प्राणियों और अनुचरों से भी पृथ्वी का दोहन करने के लिए कहा। राजा पृथ्वी के आदेश से देव, दानव, पशु, वनस्पति, पर्वत आदि सभी ने गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करके उत्तम पदार्थों, रसों और संपत्तियों को प्राप्त किया। पर्वतों द्वारा हिमालय को वश बनाकर पृथ्वी दोहन करने की कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अंतर्गत 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में हुआ है। व्यास जी कहते हैं कि गिरयो हिम वद वसाम नाना धातून स्वसानुसु, अर्थात पर्वतों ने हिमालय वश वाली पृथ्वी से निकालकर अपने शिखरों पर अनेक प्रकार की धातुओं को धारण किया। इस पौराणिक कथा से हिमालय की कथा विशेषतया प्रकट होती है। अध्यापक कथन। हिमालय प्रत्येक युग में एक महत्वपूर्ण पर्वत रहा है, इसीलिए वह भारतीयों को प्रिय है तथा उनके द्वारा प्रशंसनीय व पूजनीय है। इस प्रतीकात्मक कथा का रहस्य क्या है? अध्यापक कथन। हिमालय पृथ्वी पुत्र है, अतः समस्त चराचर जगत में वह सर्वश्रेष्ठ है। माँ अपने शरीर के सारे दूध को स्नेहवश अपने पुत्र को दे देना चाहती है। पृथ्वी ने भी यही किया है। पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है। उसका सार है रत्न, दिव्य वनस्पतियां एवं अन्य खनिज पदार्थ। वे सब हिमालय पर अपरिमित रूप से प्राप्त होते हैं, जिसे मानव पृथ्वी ने ही उसे प्रदान किया है। अर्थात समस्त पृथ्वी पर हिमालय पर्वत ही अन्य स्थानों की अपेक्षा सर्वाधिक दिव्य संपदाओं को धारण करने वाला है, महान है। आदर्श पाठ। अध्यापक द्वारा द्वितीय अन्विति का उच्चारणाभ्यास। अध्यापक निम्नलिखित पदों का उच्चारण छात्रों से पूछेगा तथा यथावश्यक अभ्यास कराएगा। प्रथम अनंत रत्न प्रभस्य, द्वितीय निमज तीन दो, तृतीय किरणेश्वी वाक। अनुकरण पाठ कतिपय छात्रों द्वारा। बोध प्रश्न। प्रथम, हिमालय पर्वत पर निरंतर क्या छाई रहती है? द्वितीय, हिम से आच्छादित हिमालय का वर्ण कैसा है? स्पष्टीकरण। अध्यापक छात्रों के लिए अग्रलिखित पद का अर्थ स्पष्ट करेगा। पद, प्रथम पद है, अर्थ है, उसके बाद प्रणाली। प्रथम, अनंत रत्न प्रभस्य, असंख्य रत्नों को उत्पन्न करने वाले। प्रणाली है समास विग्रह द्वारा अनंतानि रत्नानि प्रभति यस्यात् स तस्य। द्वितीय, सौभाग्य विलोपी, सुंदरता को नष्ट करने वाला। सौभाग्यम विलोपयति यत तत् समास विग्रह द्वारा। तृतीय, गुण सन्निपाते, गुणों के समूह में समास विग्रह द्वारा गुणानाम सन्निपाते। चतुर्थ, निमज्जति, लीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थकथन द्वारा। पंचम, इंदोह चंद्रमा का, प्रणाली है चंद्रस्य पर्याय कथन द्वारा। षष्ठ अंक, अर्थ है इसका कालिमा, प्रणाली है पर्याय कृष्णम चिन्हम पर्याय कथन द्वारा। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रथम, हिमालय पर्वत क्या उत्पन्न करने वाला है? द्वितीय, हिमालय से रत्न कितनी मात्रा में उत्पन्न होते हैं? तृतीय, हिमालय को सदा कौन आच्छादित किए रहता है? चतुर्थ, हिमालय पर आच्छादित हिम होने से उस पर क्या उत्पन्न नहीं होते? पंचम, पर्वत की शोभा किन किन कारणों से होती है? षष्ठ, हिम उस शोभा को कैसे बनाता है? सप्तम, परंतु कवि ने हिम को कैसा बताया है? अष्टम, हिमालय के हिम का दोष किन में लीन हो जाता है? नवम, इस प्रकार हिमालय में दोषों की अपेक्षा क्या अधिक है? दसम, चंद्रमा में क्या दोष है? एकादश, चंद्रमा की क्या विशेषता है? द्वादश, चंद्रमा की कालिमा किसमें लीन हो जाती है? त्रयोदश, इस उदाहरण द्वारा कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? सस्वर पाठ अन्विति द्वय का अध्यापक या छात्रों द्वारा? आवृत्त्यात्मक प्रश्न, प्रथम, सर्वशैला का दुदुहा, द्वितीय, सा धरित्री केन निर्दिष्टा, तृतीय, शैलाह कम वत्स पर्यकल्पत, चतुर्थ, कानि धरित्रया शैलह प्राप्नुवन, पंचम, हिमालस्य सौंदर्य केन न विनष्टम, षष्ठ, हिमालय दोषः हिमं कस्मिन् निमज्जति, सप्तम, चंद्रमसः अंक केषु निमज्जति, अष्टम, अतः गुणेषु विद्यमानेषु अपि कः न मान्यः भवति। समानांतर कविता, अध्यापक छात्रों से हिमालय संबंधी कविता संस्कृत या मातृभाषा में सुनाने के लिए कहेगा तथा स्वयं भी निम्न कविता सुनाएगा। उत्तरे भारते वर्षे राजते हिम पर्वतः, योसः शुभ्रतया नित्यं पुञ्जीभूतः सतोगुणः, नानामणि गणागारः दिन्योषधः समावतः, धातुमान विस्तृतः लोके रम्य देवकुलाश्रयः, शक्तिशील सौंदर्य तेज श्री विक्रम का अपूर्व अवतार, मानवता के हित जीवन का महिमा में आदर्श उदार राजित है, उत्तर आशा में ध्रुव सा पर्वतराज विशाल आदि, अंत सम्राट विश्व का भारत का शाश्वत भूपाल, स्वर्ग सुमेरु समुन्नत जिसके अक्षय वैभव कोश समान, अमित दया से द्रवित प्रात नित करता निर्जर कर से दान, पाकर जीवन को विभूति सा निर्मल और पावन परमार्थ, धरती के जीवों का जीवन होता सफल समृद्ध कृतार्थ, द्वितीय, तृतीय, शिलाजीत केसर कस्तूरी मद जीवन के दिव्य पदार्थ, कर लोकों को भेंट कर रहा जो उनका आशुष्य आयुष्य कृतार्थ, हरे भरे वन खंड मनोहर रंग रागमय फल और भूल, बना रहे हैं स्वर्ग कामना लोकों की नितांत निर्मूल, चतुर्थ, शिशिर काल में जब समाधि में होते हैं सब पर्वत लीन, हिम की सात्वोज्ज्वल समृद्धि के सम में होते वेद भेद विलीन, सत्व शुभ्र हिम की महिमा में समरस हो ग्रीवन सरताल, दीपित करते दिव्य ज्योति से भूमंडल का उन्नत भाल, गृह कार्य दोनों श्लोकों का अन्वय।